कुछ देर बाद दोनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां से एक रास्ता अंदर की ओर जाता था। बीएचयू के मुख्य द्वार के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा लगी थी। वो किसी भी रियासत के प्रवेश द्वार से कम नहीं लग रही थी। विश्वविद्यालय भी किसी राजसी शाही महल सा लग रहा था। कई लोग, विद्यार्थी, अंदर जाते और बाहर आते दिख रहे थे। दूसरी ओर कई दुकानें, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिख रहे थे। वहां बनारस की प्रसिद्ध कचौड़ी मिलती थी। स्ट्रीट फूड की कई स्टॉल्स थी जहां काफी भीड़ थी। ईशान ने विश्वविद्यालय को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, काशी? हाँ, कशिश ने, जिसकी नजरें कचौड़ी और मोमोज की दुकान पर टिकी थी, तुरंत हामी भरी। ईशान ने विश्वविद्यालय की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, पता है, बनारस के हर बच्चे की आंखों में बचपन से एक ही सपना सचता है कि उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिले। कशिश निगाहें घुमाकर विश्वविद्यालय को देखने लगी, जो बाहर से किसी राजमहल जैसा दिख रहा था। आपकी यूनिवर्सिटी तो बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत अच्छी है। किसी दिन फुर्सत में आएंगे तब दिखाऊंगा तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी। कशिश ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही सहमति में जोर से सिर हिला दिया। हाँ, कभी और दिखाइएगा, अभी ना मुझे जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप ना मुझे मोमोज और कचौड़ी खिला दीजिए। कशिश ने नाटकीय अंदाज में ईशान से मोमोज और कचौड़ी खाने की फरमाइश की और साथ ही ये भी जता दिया कि वो कितनी भूखी है। उसकी उत्साह भरी आवाज सुनकर ईशान मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद दोनों दुकान पर लगी कुर्सी पर बैठे अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहे थे। ईशान स्थिर बैठा था, पर कशिश से इंतजार नहीं हो रहा था। वो इतनी बेसब्र थी कि उसके लिए एक एक सेकंड सदियों सा बीत रहा था। वो बार बार काउंटर की ओर देखती, अपने होठों पर जीभ फिराती, कभी आसपास मौजूद लोगों को ललचाई निगाहों से देखती, कभी बेचैनी से टेबल पर तबला बजाने लगती, तो कभी बेसब्री से ईशान से पूछती कि ऑर्डर कब आएगा। ईशान कुछ कह नहीं रहा था, बस उसकी बेकरारी को खामोशी से देख रहा था और मन ही मन उसके बचपने पर मुस्कुरा भी रहा था। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आया तो कशिश से जरा भी सब्र नहीं हुआ। लगा जैसे सदियों से इंतजार में बैठी है और जन्मों से भूखी तड़प रही है, इसलिए सामने खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कशिश ने बिना एक पल गवाए एक मोमोज चटनी में डुबोकर अपने मुंह में भर लिया, फिर आंखें बंद करके उसका मजा लेने लगी। कशिश के लबों पर छाई मधुर मुस्कान और चेहरे पर झलकती संतुष्टि भरे भाव को देखकर ईशान मुस्कुराकर अपनी प्लेट से मोमोज खाने शुरू कर दिए। कशिश बड़े दिनों बाद बाहर का कुछ खा रही थी। गर्म होने के बावजूद उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसने दिल खोलकर मोमोज कचौड़ियों का मजा लिया और पेट भरने के बाद ईशान को देखकर मुस्कुराकर बोली, सच में दुनिया के बेस्ट मोमोज कचौड़ी मिलती है यहाँ। मेरा तो पेट फटने को हो गया, पर मन भरने का नाम ही नहीं ले रहा। जी चाह रहा है बस खाती जाऊं, खाती जाऊं, खाती जाऊं, पर अगर अभी मैंने और खाया तो मेरा छोटा सा पेट फट जाएगा, इसलिए अब नहीं खाऊंगी, पर अगली बार जब हम आएंगे तो मैं यहीं से मोमोज और कचौड़ी खाऊंगी। कशिश के लबों पर दिलचस्प मुस्कान थी और जिस तरह से वो बोल रही थी वो बड़ी ही प्यारी और मासूम लग रही थी। ईशान उसके खुशी से खिले चेहरे को निहारते हुए सोच में पड़ गया। कशिश को खाने पीने का कितना शौक है उससे वो अनजान तो नहीं था, पर जब से कशिश ने उसके घर में कदम रखा था उसने बाहर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। जो घर में मिलता उसी से काम चला लेती थी और कोई शिकायत भी नहीं करती थी। कितने अच्छे से वो उसके घर के माहौल में ढल गई थी, उसके परिवार के अनुरूप ढल गई थी, जबकि ये सब बस एक नाटक ही तो था। इन सब के बारे में सोचते हुए ईशान की नजरें कशिश के लबों पर गईं, जहां चटनी लगी हुई थी। ईशान ने इशारे से कशिश का मुंह साफ करने को कहा, पर वो कुछ समझी ही नहीं, आंखें बड़ी बड़ी किए कंफ्यूज सी उसे तकने लगी। चटनी लगी है तुम्हारे होठों पर, साफ कर लो, ईशान ने अब की बार बोलकर बताया। उसकी बात सुनकर कशिश ने अपने हाथ सामने कर दिए। दोनों हाथों की उंगलियां चटनी से सनी थी, जैसे मोमोज खाने के बजाय उंगलियों को चटनी में डुबोकर उन्हें चटनी खिलाई हो। ईशान ने इस छोटी सी बच्ची की यह हरकत देखकर बेबसी और अफसोस से सिर हिलाया, फिर अपना रुमाल निकालकर उसके होठों को साफ किया, पानी से कशिश के हाथ धुलवाए और अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। कशिश ने झट से रुमाल से पहले अपने हाथ पोछे, फिर मुंह पोछकर रुमाल वापस ईशान की ओर बढ़ा दिया। क्या खरीदना है तुम्हें? आगे बढ़ते हुए ईशान ने यह सवाल किया, जिस पर कशिश ने चहकते हुए जवाब दिया, दिवाली आने वाली है तो सबके लिए गिफ्ट में कपड़े लेने हैं, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, अभी आप पैसे खर्च कर लीजिएगा, घर जाकर मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। कशिश का जवाब सुनकर ईशान चौंक गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम सबके लिए गिफ्ट क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि दिवाली पर फैमिली को कुछ देना चाहिए, फिर आप उस घर के बेटे हैं तो आपका फर्ज बनता है उनकी जरूरत का ध्यान रखना। आपको नहीं पता, जब त्योहार पर कोई आपको गिफ्ट देता है तो बहुत खुशी होती है। वैसे भी ये मेरी
यहाँ पहली दिवाली है। अगर हमारी शादी असली होती और मेरे परिवार की सहमति से होती तो दिवाली पर मेरे ससुराल के लिए मायके से गिफ्ट आते, तो मैं बस रस्म निभाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी क्या पता अगले साल दिवाली पर मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, तो ये मेरे तरफ से गिफ्ट होगा सबको, जिसे बाद में देखकर वो मुझे याद कर सकेंगे। चलिए बार बार सवाल जवाब मत कीजिए मुझसे और मुझे बाजार लेकर चलिए, बहुत सामान खरीदना है और फिर चाचा जी की दुकान पर जाकर साड़ियाँ भी तो खरीदनी है। ईशान, जो पहले ही उसकी बात सुनकर हैरान था, चाचा जी का जिक्र सुनकर चौंक गया। चाचा जी की दुकान से ही क्यों? ईशान के सवाल पर कशिश उसकी ओर पलट गई। अरे जब पैसे खर्च करूंगी तो बाहर पैसे देने से अच्छा है ना कि चाचा जी की दुकान से ही खरीद लूं, घर के पैसे घर में रहेंगे, चाचा जी का भी फायदा हो जाएगा, कशिश ने सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर ईशान पहले तो हैरानी से उसे देखता रहा कि वो इतना दिमाग भी चलाती है, फिर उसने सिर हिला दिया और दोनों निकल गए शॉपिंग पर। कशिश और ईशान खरीदारी के लिए विश्वनाथ गली पहुंचे, जहां सालों पुरानी दुकानें थी, संकरी गली जिसके दोनों तरफ अलग अलग चीजों की दुकानें लगी थी। बाइक कुछ दूरी पर खड़ी करके कशिश और ईशान पैदल ही वहां आए थे। दिवाली नजदीक थी तो उनके अलावा भी बहुत से लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए वहां पहुंचे हुए थे और इस वक्त काफी भीड़ थी। पूरी गली रंग बिरंगी चीजों से सजी हुई थी, जहां नजर जाती थी वहीं निगाहें ठहर जाती, एक से एक खूबसूरत चीजों का मेला लगा था। घर के साथ सजावट के सामानों से लेकर कपड़े, चूड़ियां, गहने सब मौजूद थे। सबसे पहले ईशान ने कशिश को शॉल और स्वेटर दिलाए क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थी, पर कशिश के पास सर्दी का एक भी कपड़ा स्वेटर नहीं था। उसके बाद कशिश की शॉपिंग शुरू हुई, उसने अपने कमरे और घर की सजावट के लिए कुछ चीजें खरीदी, उसके बाद शुभिका और शुभ्रा के लिए कपड़े लिए, बाकी सबके लिए भी कुछ अच्छी और सस्ती चीजें किफायती रेट पर ली। उसको मोल भाव करते देखकर ईशान को उस दुकानदार पर तरस आ जाता, क्योंकि बातों में कशिश से जीतना नामुमकिन था। वो अपनी बात मनवाने में माहिर थी और मनवाकर ही दम लेती थी। जब दुकानदार से उसकी नहीं पटती तो अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे कोसती और इतनी प्यारी लगती कि ईशान की निगाहें उस पर ठहर जाती। दो तीन बार पूरी बाजार की सैर करने और काफी कुछ खरीदने के बाद कशिश के कहने पर ईशान उसे सुजीत जी की साड़ियों की दुकान की ओर लेकर ही जा रहा था कि कशिश की नजर सामने लगी चूड़ियों की रेडी पर गई और उसका छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत ईशान की बांह पकड़कर हिलाया और चहकते हुए बोली, मिश्रा जी मुझे चूड़ियां लेनी है, देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं।
इतनी देर से अनगिनत दुकानों और रेडियो को छान मारने और इतना सामान खरीदने के बाद ये पहली चीज थी जो कशिश ने अपने लिए लेने की बात की थी, वरना अब तक उसने घर के लगभग सभी के लिए कुछ न कुछ ले लिया था। यहाँ तक उन लोगों के लिए भी गिफ्ट लिया था जो घर के सदस्य थे पर यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया था, और अब मांगा भी तो मामूली सी कांच की चूड़ियां। ईशान एक पल के लिए कशिश को देखते हुए सोच में पड़ गया, क्या आज के ज़माने में भी ऐसी लड़की होती है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे और बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों की जगह इन साधारण चीज़ों से इतनी खुश हो जाए। कशिश ने जब देखा कि ईशान कुछ कह नहीं रहा तो उसने एक बार फिर उसके हाथ को पकड़कर हिलाया और अपनी फरमाइश दोहराई, मिश्रा जी मुझे चूड़ियां दिला दीजिए ना, दिवाली का गिफ्ट समझकर ही दिला दीजिए। दिवाली के गिफ्ट में तुम्हें बस ये चूड़ियां ही चाहिए, अनायास ही बेख्याली में ईशान के लबों से शब्द निकले, जिसे सुनकर कशिश कुछ पल सोच में पड़ गई। फिर उसने ईशान को सितारों से चमकती आंखों से देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं इतनी सी चीज में थोड़े ही निपटने दूंगी मैं आपको, कुछ बड़ी और बहुत खास चीज लूंगी मैं आपसे। उसका जवाब सुनकर ईशान के चेहरे के भाव कुछ बदल गए, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कशिश के आगे के शब्द उसके कानों से टकराए, इन चूड़ियों के साथ साथ आज आपको मुझे अपने काशी मिष्ठान भंडार लेकर जाना होगा, मुझे टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ खिलानी होंगी और दिवाली के दिन मुझे मेरे फेवरेट गुलाब जामुन भी खिलाने होंगे, वो भी अपने हाथों से बनाकर, बिल्कुल बनारसी स्टाइल में, वो भी अपने हाथों से। कशिश ने चहकते हुए खुशदिली से जवाब दिया। उसकी अतरंगी फरमाइश या यूं कहें कि डिमांड सुनकर ईशान एक बार फिर चौंक गया और हैरानी से बोला, तुम्हें खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता, मतलब तुम कुछ महंगा मांग सकती थी मुझसे। ईशान का सवाल सुनकर कशिश ने अधरों पर मोहिनी मुस्कान सजाते हुए हामी भरी, हाँ मांग तो सकती थी, पर मैं आपकी असली पत्नी नहीं हूँ, इसलिए आपके पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं और ना ही महंगे महंगे गिफ्ट मांगने का कोई अधिकार है मुझे। फिर महंगे गिफ्ट का मुझे क्या करना है, मेरा तो बस एक ही मानना है कि खाते पीते हंसते मुस्कुराते जिंदगी को खुलकर जियो, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने की जगह छोटी छोटी चीज़ों और बातों में खुशियाँ तलाश करो, इसलिए मैंने एक दोस्त के नाते आपसे वो मांगा जिसे दिलाने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी और मुझे सच्ची खुशी भी मिलेगी। चलिए अब बातों में और वक्त ज़ाया मत कीजिए और मुझे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिला दीजिए।